أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى درود بھیجیے محمد علیہ وسلم ترک گناہ کے طریقوں پر آج ہماری دوسری اور آخری نشست ہوگی اور اس کے بعد جو اگلے مرحلے ہوں گے اور اگلی کلاسز ہوں گی اس میں باقاعدہ عنوانات کے تحت آپ کے کورس سلیبس کے مطابق گفتگو شروع ہو جائے گی. تو بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست بات کا آغاز کر دیتے ہیں کہ ہم ان طریقہ کار کو ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سے ایسے طریقے ہم استعمال کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہونے پائیں. تو اس کے کچھ طریقے تو پچھلی دفعہ آ گئے تھے. آج جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دن کے زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنے کی کوشش کرے, زیادہ تر اوقات, تو آپ خود دیکھیں گے کہ کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے اندر ایک ایسی نمایاں تبدیلی لے کر آئیں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ میری پچھلی زندگی میں اور اب کی زندگی میں تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا, اور دو تین مہینے بھی اگر آپ نے اس طرح سے گزار لیے تو اس کے بعد خود وضو کے اندر ایک اتنی طاقت ہے اور ایک ایسی روحانیت کی آپ عادی ہو جائیں گی کہ اگر کبھی آپ بغیر وضو کے رہ جائیں گی تو آپ کو ایک بے چینی سی محسوس ہوگی. جس طریقے سے ہوتا ہے نا, جو انسان بہت زیادہ صفائی اور پاکیزگی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو کبھی ایسا گندا ہو جائے, وہ جسم پہ کوئی گرد و غبار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک روحانی نظافت کی ایک ایسی عادی آپ ہو جائیں گی کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اب میرا گناہ کرنے کا ویسا دل ہی نہیں چاہتا کہ جس طرح سے پہلے چاہا کرتا تھا. پہلے تو ذرا سا موقع آتا تھا اور میں گناہ کی طرف فوراً چلی جاتی تھی. اب جاتے جاتے آپ کے قدم پلٹ آئیں گے, کسی برائی کی طرف جانے کا ارادہ اور جو دائیا جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ آپ انتہائی آسانی کے ساتھ پیچھے چھڑا کے نکل جائیں گے وہاں سے. یہ بہت اہم چیز, بہت اہم. خود امام خمینی علیہ الرحمہ کہیں سفر میں بھی کہیں ہوتے تھے, سفر میں تو بھی جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی باوضو نہ ہو تو فوراً وضو کر لیا کرتے تھے. زیادہ تر اوقات میں باوضو رہنا آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے, ابلیس کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو مسلسل گناہوں سے بچاتا ہے. تھوڑا سا آپ پریکٹس کر کے دیکھیں, ظاہر ہے دیکھیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے, بڑے مقامات کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے, اور وضو کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ محنت نہیں. جبکہ روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وضو زیادہ تر اوقات میں باوضو رہو, چاہے سختی میں ہو چاہے آسانی میں. بہت سارے افراد ایسے ہیں, میں جانتا ہوں, خود مجھ سے ذکر کر چکے ہیں کہ جب کہیں کوئی سفر بھی درپیش ہوتا ہے, حتیٰ کہ جیسے کہ ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں, مثلا باتھ روم وہاں پر گئے یا باوضو نہ رہے تو جہاز کے جو چھوٹے سے کوٹھڑی نما ایک باتھ روم ہوتے ہیں اس تک میں جا کے وہ وضو کرتے ہیں. یعنی کوئی بھی موقع ایسا رہنے نہیں دیتے کہ جس میں وہ بے وضو رہے. اور خاص طور پر سوتے وقت وضو کی تو بہت ہی زیادہ تاکید آئی. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں درود بھیجیے محمد علیہ وسلم, اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بستر پہ جائے سونے کے لیے, مفہوم ہے روایت کا, تو وہ بستر اس کا مثل قبر کے ہے جس میں وہ مثل مردار کے لیٹا. یعنی اگر کوئی شخص بغیر وضو کے جائے, اور اگر آپ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہیں گی تو بہت زیادہ اس بات کی بھی تاکید ہے کہ انسان اگر روحانی کسی بڑے مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کے اوقات آنے سے پہلے وضو کر کے رہے. یہاں تک روایت میں بات آئی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے نماز کا وقت آ جانے کے بعد وضو کیا, اس نے نماز کی بے احترامی کی. نماز کے احترام کا تقاضا تھا کہ ابھی وقت نہیں بھی آیا, مثلا ایک بجے نماز کا وقت آئے گا بالفرض, आप 1:15 बजे से वजू करके तैयारी करके रहेंगे तो आप ऐसा है कि जैसे नमाज का एहतराम कर रहे हैं। नमाज का वक्त आ गया और आगे बढ़ता गया और 3 बज गए और 4 बज गए और 5 बज गए और उसके बाद फिर नमाज का ख्याल आ रहा है और फिर आप वजू करने जा रही हैं, तो एक गोना इसके अंदर तौहीन और बेहतरामी का पहलू का शायबा सा होने लगता है कि आपकी निगाह में कोई खास अहमियत नहीं है नमाज की। तो ये एक अहम चीज़ है। और ख़ास तौर पर अगर ये जो वजू आप करेंगे इसमें कुछ मुस्तहबात का भी ख्याल कर लें, जो अभी कुछ ही दिनों बाद आप लोगों की बाकायदा मसाइल फ़िक्र जो वजू के होंगे उनकी जब क्लास होगी तो उसमें हम उन मुस्तहब दुआओं का तस्करा करेंगे। लेकिन वजू के जो अपने मुस्तहबात हैं तकरीबन कुछ उलमा ने अपनी किताबों में 750 तक बयान किए हैं, 750 मुस्तहबात हैं वजू। लेकिन ज़ाहिर है कि वो सब पे तो अमल नहीं किया जा सकता, वरना तो एक घंटा तो वजू करने में वक्त लग जाएगा और फिर नमाज में तो और ज़्यादा। तो कुछ ख़ास दुआएं हैं उनको अगर आप बाकायदा लोग जब वजू की क्लास होगी तो उसमें मैं बताऊंगा भी कि उसको उनको याद करने का तरीका कि हर हर मौके पर वो कुंडली करते वक्त ये दुआ पढ़ी जाए और दायां हाथ धोते वक्त ये और बायां हाथ धोते वक्त ये और मसा के वक्त ये वगैरह वगैरह। तो वो अगर आप अपने बाथरूम में जहाँ पे आप ज़्यादातर औकात में वजू करती हैं वॉश बेसिन के पास शीशे पे उन दुआओं को लिख कर अगर आप लगा लें और तो आपको देखेंगे कि 15-20 रोज़ में ज़ुबानी याद हो जाएंगी और फिर आपको बहुत ज़्यादा वो दुआएं फ़ायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि उन दुआओं में कदम कदम पर मैदान क़यामत और आखरत को याद दिलाएगी। जब इंसान ज़्यादातर औकात में बावजू रहेगा और बार बार आखरत को याद करेगा तो आप खुद सोचेंगे उसका दिल और दिमाग कभी जाएगा ही नहीं किसी गुनाह करने की तरफ। ये इसके पीछे फ़लसफ़ा। जब कभी ऐसा कोई मौका पेश आता था कि बू अली सीना इतने मशहूर आलिम गुजरे हैं, कुछ उलमा इसके कायल थे कि बू अली सीना मसलन आगा खानी थे या इस्माइली जिसे कहा जाए, आगा खानी तो खैर बाद में नाम बना वरना इस्माइली, लेकिन कुछ उलमा की तहकीक ये कि नहीं शिया हसन आशरी थे। इनके मुतालिक मिलता है कि जब भी इन्हें कोई मुश्किल मसला पेश आता था कि 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए वजू करते थे और वजू करते ही और 2 रकत नमाज पढ़ते ही उनका वो मुश्किल से मुश्किल मसला हल हो जाता था। कोई इल्मी मसला कोई ऐसा पेश आ जाता था अगर इन्हें, तो आप भी माशाल्लाह इल्मे दीन की राह में आ चुकी हैं तो आपको चाहिए कि अगर ज़्यादातर औकात में बावजूद रहें तो खुद एक नूरानियत और बरकत भी आएगी और शैतान भी आपसे दूर हो जाएगा। गोया एक लिहाज से खुदाई हिसार में आप आ जाएंगे, शयातीन को कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा अगर आप हर ज़्यादातर औकात में बावजूद रहने की कोशिश करें। थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देख लें, 15 रोज़ 20 रोज़, फिर आप खुद देखेंगे कि एक अजीब रूहानी फिजा और कैफियत आपको महसूस होगी, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाएगा। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। उसके अलावा एक चीज़ और है, रोज़ा पूरा गुजारने के बाद जो इफ्तार का वक्त आया है तो वो मैंने आपको वो चीज़ दिखाई, हालांकि असल मकसद मेरा ये था कि रोज़ा रखना एक इंतहाई अहम तरीन चीज़ है शैतान से पीछा छुड़ाने के लिए और गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए। रोज़े का जो फ़लसफ़ा है, बहुत सारी इबादतें ऐसी हैं जिनके फ़लसफ़े नहीं बताए गए, लेकिन रोज़े का फ़लसफ़ा तो खुद परवरदिगार ने कुरान में बता दिया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकियों परहेजगार हो जाओ और अपने आप को गुनाहों से बचा लो। इसका तो बाकायदा ज़ाहिर बज़ाहिर खुला खुला जो फ़लसफ़ा है वो आपके सामने है कि अगर आप रोज़े से रहें, लेकिन कितने रोज़े, वैसे शरीयत इस्लाम में आमतौर पर कहा जाता है अगर हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रख लिया जाए, जो मैं अभी फ़िलहाल आपसे नहीं कहूँगा, आप कम से कम इब्तदा करें महीने में 1 रोज़े से, और वो भी रोज़ा अगर आपका कोई कज़ा बाकी है तो कज़ा की नीयत से आप रोज़ा रखें। अगर आप, क्योंकि आप आदी नहीं हैं, वैसे उलमा ये बयान करते हैं जो इमाम खुमैनी का खुदसाजी का चार्ट है, अपने आप को इंसान रूहानी तौर पर कैसे तरक्की दे, तो उसमें उन्होंने पीर और जुमेरात के दिन रोज़ा रखने की ताकीद की। लेकिन हो सकता है कि बहुत सी तबीयतों में गिरा गुजरे रोज़ा रखना। अभी रमज़ान इस्तकबाल रमज़ान की आप लोगों की क्लासेज आएंगी और पूरा रमज़ान उसके मसाइल बयान करते हुए इंशाल्लाह गुजरेगा, तो आप खुद देखेंगे उसमें रोज़े के बहुत सारे फ़ायदे और फ़लसफ़े आपकी निगाह में आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा और फ़लसफ़ा इसका ये है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा और परहेजगारी इख्तियार कर लो। महीने में 1 रोज़े से इब्तदा करें बस, और फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीने जब इस तरह से गुजरेंगे फिर आपका खुद ही दिल चाहने लगेगा कि नहीं मैं हफ्ते में 2 दिन रख लूँ, 15 रोज़ में आप एक दफ़ा कर दीजिएगा, फिर हफ्ते में कभी तौफीक में इजाफा हो जाए तो हफ्ते में 2 दफ़ा के ऊपर चली जाइएगा। लेकिन जिनके ऊपर कज़ा रोज़े बाकी हैं वो कोई भी मुस्तहब रोज़ा नहीं रख सकते। उनका रोज़ा बातिल हो जाएगा, उन्होंने मुस्तहब रोज़े की नियत। तो ख़वातीन पे आम तौर पर कुछ ना कुछ कज़ा रोज़े बाकी होते हैं जो कि होने नहीं चाहिए, लेकिन चले फिर भी अगर कुछ रोज़े बाकी हैं तो पहले अपने कज़ा आप अंजाम दें। रोज़े के अंदर भी आप देखें कि कितनी ज़्यादा एक फ़लसफ़ा है इसका, तो रोज़े में कोई भी आपको नहीं देख रहा है, बिल्कुल बंद घर है, बंद कमरा है, कमरे में फ्रिज भी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप नहीं जाती उसमें से ठंडा पानी निकाल कर नहीं पीती। खाने की चीज़ रखी हुई नज़र आ रही है, आप नहीं जाती कि मेरा रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन दिल चाह रहा होता है, दिल चाहता है। ख़ासतौर पर इंसान अगर शुरू में कच्चा है लेकिन दिल चाह रहा है कि मैं फलाना चीज़ खा लूँ, लेकिन रुक रहा है, बार बार जाता है रुकता है, जाता है रुकता है, उसका दिल उन चीज़ों की तरफ रगबत करता है, लेकिन हुक्म खुदा की बजावरी के ख्याल की नीयत से वो उन चीज़ों को नहीं खाता। तो इसका फ़लसफ़ा क्या बना, यानी गुनाहों की गुनाह है उसको, उसे मालूम है कि अगर मैंने रोज़ा तोड़ा तो परवरदिगार आलम मुझे देख रहा है, कोई भी चाहे इस वक्त घर में मौजूद नहीं है, तो ये इससे खुद ब खुद एक तकवा पैदा होता है उसके अंदर। आप झूठ बोलने जा रही हैं और अचानक से आपकी जो है ज़ुबान रुक जाती है कि मैं रोज़े से हूँ, आप गीबत करने आपकी ज़ुबान के ऊपर क्योंकि आदी हो चुकी हैं, गीबत करने निकल रही होती है ज़ुबान से गीबत, लेकिन क्या है कि आप फ़ौरन रुक जाती हैं कि नहीं मेरा तो रोज़ा है। किसी से झगड़ा करने की नौबत आ जाती है, लेकिन क्या है, जैसे अक्सर नहीं होता मिनी बसों वगैरह के अंदर आप देखती हैं तो भाई ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो आज मैं रोज़े से हूँ, भाई इसका क्या ताल्लुक है, यानी बहरहाल कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, मेरा ज़्यादा मुँह ना खुलवाओ। तो इंसान के दिमाग में ये होता है कि तकवा और परहेजगारी की तरफ जाए। तो अगर आप कभी भी इस तरह से, ये जो फ़लसफ़ा है इसका कि बार बार जो रुकने की आप मशक आपको होती है, ये खुद आपके अंदर एक तकवा पैदा करती है। तो एक महीने में एक रोज़े से आप इब्तदा करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप खुद बखुद अपने अंदर एक नुमाया तब्दीली महसूस करेंगे। अरे रोज़ा रखने से तो आपके कज़ा वाजिबात उतरेंगे, दूसरा आप गुनाहों की तरफ उस अंदाज से नहीं जा सकेंगे कि जैसे पहले बहुत आसानी से शैतान के हाथ में जैसे खिलौना इंसान बन जाता है, इस तरह से हो जाए। अच्छा, आपने एक चीज़ और भी, बस एक छोटी सी बात करके फिर अगले नुक्ते पर चला जाऊंगा। आपने देखा कि रोज़े में इंसान को मुबाहात क्यों छुड़वाए जाते हैं? देखिए वाजिबात हराम चीज़ें तो छुड़वाई जाएंगी आपसे, झूठ मत बोलें, गीबत मत करें, किसी को बुरा वाला ना कहें, गालियां मत दें, सुअज़नी और कीना ना रखें वगैरह वगैरह, और जो और हराम चीज़ें हैं कि खाना पीने से इंसान दूरी अख्तियार करें, इमसाक करें, इन चीज़ों की तरफ ना जाए। लेकिन खाना और पीना तो कोई हराम चीज़ नहीं थी, ये तो मुबाह चीज़ थी, फिर मुबाह चीज़ों से हमें क्यों रोका गया? आम ज़िंदगी में तो हमें इजाज़त थी, चले झूठ और गीबत की तो आम, जब हमारा रोज़ा नहीं होता तब भी हमें इजाज़त नहीं होती, इसका भी एक फ़लसफ़ा है। देखिए अगर आप सबके पास कॉपियाँ हैं, अगर आप अपने सफ़े को मोड़ दें तो आप उसे कितना भी सफ़े को बाद में सीधा के करने की कोशिश करें वो बिल्कुल सीधा नहीं होता। सफ़े को सीधा करने की एक ही तरकीब है कि सफ़े को बिल्कुल मुखालिफ सिमत में दोबारा मोड़ दिया जाए। एक तो जिस सिमत में आपने पहले मोड़ा था, अब सीधा करेंगे सीधा नहीं हो रहा, बार बार थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, इसको मोड़ने के लिए ज़रूरी है, सीधा करने के लिए किसी मुखालिफ सिमत में मोड़ दिया जाए, अब क्या होगा, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो हमारा नफ्स भी बुराइयों और गुनाहों का इतना आदी हो चुका होता है कि सीधी तरीके से बाज नहीं आता। सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता तुम हराम काम ना करो, उससे कुछ मुबाहात भी छुड़वाए जाते हैं ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। जब भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हराम की हद तक नहीं, मुबाहात, खाना और पीना मुबाह था, लेकिन फिर भी हमसे छुड़वाया गया ताकि तुम्हारा नफ्स बुराइयों का इतना आदी हो गया है कि सीधे तरीके से बाज नहीं आएगा, इसके लिए ज़रूरी है इससे कुछ मुबाहात भी छुड़वाए। मुझे नहीं पता कि आपको कितना समझ आई ये बात या नहीं आई, लेकिन बहरहाल सिंपल सी बात आसान थी, सादा थी। तो एक तो बावजू हर वक्त रहने की कोशिश करें ज़्यादातर औकात में, बहुत ज़्यादा वसवास की हद तक ना जाएं, लेकिन कोशिश करें कि जब भी याद आए, जब भी वॉशरूम जाएं तो वज़ू करके ही वहाँ से बाहर आए। और दूसरी चीज़ ये बताई कि महीने में एक रोज़े से इब्तदा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तादाद को ज़रा बढ़ाने की कोशिश करें, बहुत नुमाया तब्दीली अपने अंदर आएगी। उसके बाद अगला तरीका है, वो है ज़िक्र यूनुसिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस जब मछली के पेट में गए थे और उसके बाद इस जिक्र को पढ़ा था, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल ग़म्मि व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। पहले तो उन्होंने ये दुआ पढ़ी जो जिक्र यूनुसिया कहलाती है, या जो अहले सुन्नत आम जबान में आयत करीमा का विर्द करना जिसको कहते हैं ना, वो यही आयत। ये हर मुश्किल और परेशानी में जब हजरत यूनुस को जब व्हेल मछली के एक लिहाज से पेट में चले गए थे, फिर रिवायात इसमें जरा मुख्तलिफ है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन जब उन्होंने ये जिक्र पढ़ा तो फौरन मछली के पेट से जो है वो बाहर निकल आए, फौरी मदद आई, फर्स्ट तजबना, फौरी उनके पास मदद आई, उनकी दुआ कबूल हुई और वो मछली के पेट से बाहर आए। तो इसी तरीके से अगर हम इस जिक्र को खास तौर पर, उलमा ये फरमाते हैं कि अगर तर्क गुनाह में या खुद साजी में या अगर अपने मारिफत को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो अगर नमाजों के बाद इस जिक्र को सजदे में जाकर 400 दफ़ा पढ़ा जाए तो इंसान फितरत से आज़ाद हो जाता है। बहुत सारे देखिए गुनाह ऐसे हैं जो आप आदतन करती हैं, दिल भी नहीं, जैसे गीबत हमारी जुबानों पर ऐसी चढ़ गई कि उसकी ज़रूरत हो या ना हो, मज़ा आए या ना आए, गुनाह है बेलज़्ज़त। जिसे कहा जाता है ना कि गुनाह की मिसाल असल में ख़ारिश की सी, खुजाते चले जाइए खुजाते चले जाइए, उस वक्त तो मज़ा आ रहा होता है लेकिन क्या है कि एक सोजिश की सूरत में बाद में जलन आपको होती। अहले सुन्नत के आलिम थे ना मौलाना अशरफ अली थानवी, वो तो उनका तो शेर है बाकायदा इस पर कि ना लड्डू में ना पेड़े में ना बिरयानी में है जो मज़ा है यारो पीठ खुजलाने में, बाकायदा उनका शेर भी है। तो बहरहाल गुनाह की मिसाल ख़ारिश जैसी, खुजाते चले जाइए खुजाते चले, उस वक्त तो हल्का फुल्का मज़ा आ रहा होता है लेकिन उसके बाद फिर बड़ी सोजिश उसके अंदर होती है। तो इसी तरीके से अगर कोई इस जिक्र को 400 दफ़ा, अच्छा बहुत से लोगों ने इसकी इब्तदा करके देखी, उन्होंने कहा भाई 100 दफ़ा पढ़ने में हमारे सर में ऐसा दर्द हुआ कि हमसे, इसमें भी स्ट्रेचिंग होती है, यानी एक एक साथ बहुत मुश्किल है कि आपके साथ हो, तो इस्लाम ने इसका तकाजा भी नहीं किया। आप कहेंगे ठीक है मैं 25 दफ़ा एक सजदे में, इसको तोड़ तोड़ के भी किया जा सकता है, 25 दफ़ा एक सजदे में कर लें फिर सर उठा लें, या दिन में पूरी दफ़ा में 400 दफ़ा का एक अदद पूरा कर लें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते हुए जाएं यहाँ तक कि 400 दफ़ा तक आप पहुँच जाएं। इब्तदान ऐसा करें लेकिन कोशिश करें कि एक ही सजदे में बाद के मराहिल के अंदर एक सजदे में ले जाएं इसको। तो बहुत से इंसान जो आदतन गुनाह करता है, आदतन मज़ा नहीं भी आ रहा होता उसको, सोजिश हो रही होती है उसके नतीजे में, उस ख़ारिश के नतीजे में उसको, लेकिन क्या है कि उसको बस वो आदी हो गया है उन गुनाहों का, तो वो जब ये जिक्र ही उनसिया पड़ेगा रोज़ाना 400 दफ़ा तो वो फितरत से आज़ाद हो जाएगा। बहुत से गुनाह फितरत में तो खैर इस्लाम की फितरत में इंसान पैदा हुआ है, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें आदतन भी हो गई हैं, तो तमाम के तमाम गुनाह जो आदतन होते हैं किसी और भी वजह से, वो जिक्र यूनुसिया की बरकत से उसको निजात अता हो जाएगी। जैसे हज़रत यूनुस को मछली के पेट से रिहाई मिली थी, इस तरीके से आपको भी इन गुनाहों से निजात अता हो जाएगी। तो 400 दफ़ा अगर इस जिक्र को पढ़ा जाए, जिक्र यूनुसिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, और फिर जब ये आप पढ़ लेंगी तो फस्तजबना लहू, अगली आयत है वनजयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हम इसी तरीके से मोमिनीन को निजात अता करते हैं। उसके बाद अगला जो तरीका है वो है तस्बीह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तस्बीह हज़रत ज़हरा के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया। तस्बीह हज़रत ज़हरा पढ़ने के अलग से आदाब हैं जो आपकी इंशाल्लाह कभी क्लास होगी तो उसके अंदर हम बताएंगे। इसको बहुत ही सरसरी सा ले लिया गया है, बस इंसान हाथ में पकड़ता है और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कहते हुए बिल्कुल बेजारी के साथ कि दिमाग कहीं और है, किसी और से बातें कर रहा है और यहाँ साथ में ये जो है तस्बीह पढ़ता जा रहा है। कि देखिए इस तरह से जब इसको पढ़ने वाला ही उसको हकीर समझेगा, बस एक आदत बना ली है इसकी, वरना तस्बीह हज़रत ज़हरा इतने फ़ज़ाइल रखती है कि अक्सर अफराद का तो तजुर्बा है कोई भी अहम काम के लिए कभी निकल रहे होते हैं और उस नियत से तस्बीह पढ़ते हुए जाएं वो काम फौरन हो जाता है। बाकायदा हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि पिछले अदवार में जो जब टारगेट किलिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी कराची में, तो कुछ अफराद ऐसे थे जो परफेक्ट किलर, आपको पता है कि आमतौर पर इस किस्म के लिए अफराद मामूर किए जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट किलर और निशानेबाज होते हैं, वो एक ही गोली में काम कर देते हैं। उन्होंने कहा कुछ अफराद ऐसे थे मोमिनीन में से कि जो कि उन परफेक्ट जो किलर्स थे उनके उससे बच निकले वो, वो जिंदा रहे। तो उन्होंने कहा कि बाकायदा उन्होंने खुद ذاتی तौर पर तहकीक की इस बात, तो मालूम ये चला कि वो तमाम के तमाम अफराद अपनी हिफाजत की नीयत से तस्बीह हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ा करते थे। तो ये तो मामूली से जिस्म जान का मसला, बहुत हुआ तो इंसान की जान ही चली जाएगी ना आखरत, वहाँ तो गुनाहों की जो बर्बादी हमारे साथ है, जो हमारी रूह को खाए चली जा रही है, उससे तो हमारी आखरत हमेशा की बर्बाद होने वाली है। वहाँ क्या ये तस्बीह काम नहीं करेगी? 100% काम करेगी, यकीनन काम करेगी, बल्कि अपने जिस्मानी एतबार से आपको अपने अंदर ताकत और तवानाई के लिए भी इस तस्बीह को काम में लाना चाहिए। हज़रत ज़हरा ने जो फरमाइश की थी पैगम्बर इस्लाम से और कहा था कि घर में जो आप देखती हैं कि जो जो उसका वाक़ा है तस्बीहत हज़रत ज़हरा को पैगम्बर की तरफ से जो तोहफ़ा जो पैगंबर ने शहजादी को दिया था, तो उन्होंने काम की ज्यादती की शिकायत की थी। तो बजाय इसके कि किसी मुलाजिमा का इंतज़ाम करते, कोई कनीज उनके लिए लेके आते, कोई मेड लेकर आते उनके लिए, कहते कि भाई ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तस्बीह का तोहफा तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब है कि जिस्मानी एतबार से भी कमजोरियों को दूर करने वाली असर पजीर इसकी बाज़ औक़ात यूँ देखने में नहीं आती, क्योंकि आपकी निगाह में खुद इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं रही। और जैसे वो कहा जाता है ना कि नाम खुदा हमारी जुबानों पर चढ़ गया इतना कि उसकी याद दिलों से निकल गई, यानी जुबान के ऊपर तो बहुत आ गया, रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली न रही। बस अजाने तो दी जा रही लेकिन हजरत बिलाल जैसी जज्बा और रूह कहाँ से लेकर आए। तो बास औकात अगर इंसान मुकम्मल आदाब और शराइत का ख्याल कर ले तो फिर वो देखेगा कि वाकई इन तस्बीहात के ऐसे ऐसे फ़ायदे उसको मिलेंगे कि वो खुद हैरान रह जाएगा। तो अपने आप को समझाएं, इस सिलसिले में अली रज़ा रिजाली तेहरानी की किताब तस्बीह हज़रत ज़हरा की फजीलतों के नाम से उर्दू में भी तर्जुमा हुई, आप वो लेके पढ़ें, उसमें सारे आदाब लिखे हुए हैं, इसके सारे फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं, फिर आपको इस तस्बीह की अहमियत का एहसास होगा। इसके बहुत से अमलियात भी हैं जो तस्बीह हज़रत ज़हरा के पढ़े जाते हैं, तो आदाब व शराइत के साथ। ख़ास तौर पर इस मसले में हमारे एक दोस्त थे जो खुद इराकी थे, और जब आका खोई से मिले थे नजफ में, तो आका खोई ने उनको तुरबत इमाम मजलूम असली जो जो उनकी कब्र की मिट्टी की बनी हुई एक सजदगा दी थी आका खोई ने, और कहा था कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा औकात में जिक्र खुदा करते रहें, और जैसे ही तुम करबला और रजब की हदूद से यहाँ से बाहर निकलोगे शयातीन इसके ऊपर हमला करेंगे, इस तस्बीह के ऊपर, और उसके असर को ज़ाहिल करने की कोशिश करेंगे। रिवायात में ये बात आई है सर कि शयातीन इस तस्बीह के ऊपर हमला आवर होते हैं। तो बहरहाल कोशिश आप ये करें कि ज़्यादातर अवकात में अगर आपको असली सजदगा असली खाके शिफा की बनी हुई तस्बीह मिल जाए तो क्या कहना, आमतौर पर लोगों के पास होती हैं, लेकिन खाके करबला की भी हो या आम तस्बीह भी हो, लेकिन आप उस तरीक़ेकार से पढ़ें जिसे तस्बीह हज़रत ज़हरा कहा जाता है, लेकिन उन आदाब और शराइत के साथ, तो फिर आप देखेंगे कि वाकई आम तौर पर जिस्मानी सिर्फ परेशानियों से या दुश्मनों से हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ा दुश्मन जो हमारा शैतान है उससे हिफाजत की नीयत से भी इस तस्बीह को पढ़ा जा सकता है। फिर देखिए कि आप गुनाहों से आप अपने आप को कैसा बचा सकेंगे। उसके बाद ये एक तरीका हुआ। अगला तरीका वो ये है कि इंसान अपने नफ्स को कुछ सजाएं दे, नफ्स को सजाएं देना। इसमें एक तो वो सूफिया का गैर इस्लामी तरीका है सजाएं देने का, या हिंदू कुछ साधुओं का कीलों के ऊपर लेटे हुए हैं और अपने जिस्म को ऐसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस ये तो गैर इस्लामी मुजाहिदात कहलाते हैं जो सूफिया वगैरह से, ये गुमराहकुन चीज़ें, इनका इस्लाम में कोई वजूद नहीं। लेकिन कुछ सजाएं ऐसी हैं कि जो इंसान अपने आप को गुनाहों के लिए खुद दे सकता। आयतुल्ला सैयद महदी बहरुल उलूम कहा करते थे कि इंसान अपनी कयामत को अपनी ज़िंदगी की हालत में इसी दुनिया में बर्पा कर सकता। अपना मुहासिबा की जब मुहासिबे की बात भी आगे आएगी तो फिर दो किसी शख्स के भी दो मुहासिबे नहीं होंगे कि मैदान कयामत में भी और यहाँ भी, अपना हिसाब अगर कोई शख्स साफ करके चला जाए, अपने आप को अगर यहीं सज़ा दे ले तो वहाँ फिर कोई सज़ा नहीं है, और इस तरह से अपने आप गुनाहों से अपने आप को बचा ले। वो क्या है, मसलन इस्लामी सज़ाएं आप अपने ऊपर दे सकती हैं कि अगर अब दोबारा ये गीबत मुझसे हुई तो मैं दो रकत नमाज पढ़ूँगी, आप ना नज़र कर लें, कसम खा लें, अहद कर लें, बाकायदा शरई कसम खा लें, मैं कसम खाती हूँ अल्लाह का नाम लेकर के मसलन अगर, या अहद कर लें कि अगर ऐसा कुछ हुआ दोबारा, ये गुना मुझसे दोबारा हुआ तो मैं दो रकत नमाज पढ़ूँगी। अच्छा आप सोचेंगे भाई इस तरह तो मुझे जो हज़ारों रकतें पढ़नी पड़ जाएंगी, नहीं ये सिर्फ शैतानी धोखा। जब आप ये देखेंगी ना कि आपको रोजाना, बल्कि आपका नफ्स जब देखेगा, और नफ्स को सबसे ज्यादा गिरा जो चीज गुजरती है वो नमाज पढ़ना। नफ्स जब ये देखेगा कि हर इस गुनाह के नतीजे में, गइबत के नतीजे में मुझे 5, 7, 8, 10 दफा नमाजें पढ़ना पड़ रही हैं, तो जैसे ही आप गइबत करने भी लगेंगी तो नफ्स आगे बढ़ के आपको रोक देगा, खुदा के लिए गइबत ना करना वरना नमाज पढ़नी पड़ जाएगी। ये देखिए बाकायदा एक तरीका है, आप इसको करके देखिए कि आप खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। अरे ठीक है, आप कहेंगे कि चंद नमाजें तो पढ़ना पड़नी, चले मैं पढ़ लूंगी, लेकिन क्या होगा कि 2, 3, 4 दफा भी अगर आपको नमाजें पढ़ना पड़ गई तो नफ्स आगे बढ़कर, क्योंकि शैतान को भी सबसे ज्यादा गिरा आपका सजदा करना गुजरता, कि जिस सजदा ना करने की वजह से मैं रानदाए दरगाह इलाही, वो उसी सजदे को बेस बनाकर इंसान तकर्रुब खुदा की मंजिल हासिल कर रहा है, तो वो खुद आपको मजबूर करेगा कि ये गुनाह ना करो, वरना इसके नतीजे में इससे भी बड़ी परेशानी होगी कि नमाजें पढ़ रहा है। जो नमाज इस नियत उसकी बजावरी में, जो आपने उससे पहले नजर की थी, कसम खाई थी, अहद किया था कि अगर ये गुनाह मुझसे हो गया तो मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगी, अब मैं 2 रकत नमाज पढ़ रही हूँ, उस गुनाह की पादाश में वो जो मैंने अपने ऊपर खुद से एक चीज़ वाजिब की थी, जिस तरह इंसान नज़र करके कोई चीज़ वाजिब कर लेता है, जैसे हमारे यहाँ नज़र आम तौर पर ही होता है, खाना सामने रखा उसके ऊपर, वो भी ठीक है, एक तरीक़ेकार है वो भी, लेकिन नज़रें इस किस्म की भी जा सकती हैं कि अगर मेरा फुला काम हो गया तो मसलन मैं 2 रकत नमाज पढ़ूंगी, मेरा फुला काम अगर हो गया तो मैं नमाज के लिए मसलन अजान कहूँगी, मेरा फुला काम हो गया तो मैं तस्बीह हज़रत ज़हरा 10 दफ़ा मसलन पढ़ूंगी, ये सब मुख्तलिफ नज़र आप कर सकती हैं, फिर उनका पूरा करना वाजिब हो जाता है। जब आपके ऊपर ये चीज़ वाजिब होने लगेंगी तो खुद शैतान आपको मजबूर करेगा कि इस काम को ना करो। ये आप करके देखिए कि अपने, ये इस्लामी मुजाहिदात कहलाते हैं। इस पर हौज़े हाय इल्मिया में नजफ़ और कुम के जो तालिब इल्म हैं वहाँ पर बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो अमल करते हैं, तो उनका भी एक तरीक़ेकार यही, या मसलन जैसे वो अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं कि अगर किसी रात को हम नमाज शब ना पढ़ें, ये फिर कफारात की बहस में भी ये चीज़ आती है, लेकिन अभी उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा, कि अगर किसी रात को मसलन मैं नमाज शब के लिए ना उठा, या आप सोचें कि अगर मैं किसी रात को नमाज शब के लिए नहीं उठी, नमाज शब मुझसे क़ज़ा हो गई, तो मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगी, ये तालिब इल्म आम तौर पर अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि 2-3 दफ़ा ही ऐसा हो पाता है बस, फिर उसके बाद खुद बखुद वो जो अगले दिन रोज़ा रखने की जो पेनल्टी और एक नफ्स को और ज़्यादा अपने परेशान करने वाली बात होती है, तो फिर इंसान का नफ्स उसे खुद ही उठा देता है कि भाई उठो और नमाज शब पढ़ लो, क्योंकि अगले दिन उसके बाद उससे भी सख्त मुजाहिदा करना पड़ेगा। ये एक है इसके अंदर बाकायदा, जो कि जिन पर तालिब इल्म भी अमल करते हैं और अपनी रूहानियत को बचाने के लिए और अपने आप को मुस्तकिल तौर पर अपने इरफान को बढ़ाने के लिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं। दूसरी सज़ा जो आप अपने नफ्स को दे सकती हैं वो ये कि अगर मैं ये गुनाह मुझसे दोबारा हुआ, ये झूठ मैंने दोबारा बोला, मैं गीबत की बहुत आदी हो गई दोबारा मुझसे हुआ, मैं गाना सुनने की बहुत आदी हो गई और गाना मैंने दोबारा सुना, तो मैं इतना सदका राहे खुदा में दूंगी जो मेरे नफ्स पर शाख गुजरे। वरना अगर मसलन आप नियत कर लेंगे मैं 54 राह खुदा में दूंगी, तो आपने कहा कि चले बहुत सारे कुल्ले मैंने करा के रखे हुए, देती रहूंगी 4-4 आने, नहीं, हर शख्स की अपनी माली हैसियत के मुताबिक जितना उसके नफ्स पर शाख गुजरता है वो सदका देना। मसलन एक एवरेज जो एक मिडिल क्लास किस्म का जो घराना होता है वो हर गुनाह के बदले एक दफ़ा भी गीबत हो गई और 500 रुपये देने पड़ जाए उसको मसलन, तो 500 रुपये बहरहाल एक बड़ी रकम है, जिसकी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह, 500-500 रुपये हर अगर एक गुनाह के बदले वो राह खुदा में सदका देने के लिए अपने ऊपर वाजिब कर ले, तो खुद ब खुद उसका उसे दिमाग में फौरन जबान पे गीबत आते आते रुक जाएगी और वो रोक लेगा, अरे इसके नतीजे मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे। ये कुछ इस्लामी सज़ाओं का एक कॉन्सेप्ट जो इंसान अपने लिए तजवीज़ कर सकता है, ये बहुत अहम चीज़ है, इस पर अमल करके देखिए इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे, आप सोचेंगे भाई इस तरह तो मेरी पूरी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी, नहीं खर्च होगी, 2-3 दफ़ा के बाद 1,500 रुपये खर्च होंगे, तो उसके बाद आप इस गुनाह से अपने आप को बचा लेंगे। बड़ा अजीब व गरीब इसके अंदर एक सलाहियत है और इस्लाम ने इसको रिकमेंड भी किया। इसी तरीके से मसलन आप ये भी अपने आप को कर सकती हैं कि मसलन मैं अगले दिन ठंडा पानी नहीं पीऊँगी, एक दिन के लिए, 3 दिन के, अब ये गुनाह मुझसे दोबारा हो गया, अब शदीद गर्मियाँ शुरू होने वाली, उसमें अगर ठंडा पानी सोचिए कि कितना दिल चाह रहा होता है, लेकिन हर दफ़ा आप ये कहेंगे कि भाई मैंने तो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अपना फला गुनाह के नतीजे में अगर मैंने ये गुनाह दोबारा किया मसलन, तो इसकी पादाश में मैं 3 दिन तक ठंडा पानी नहीं पीऊँगा, या मसलन मैं थोड़ी देर के लिए एक घंटे तक के लिए धूप में खड़ी रहूंगी, लेकिन ये घर में ना कीजिए, और ना कहेंगे लोग क्या खपती बने की बात है, इनको मदरसे में सिखाई जा रही है। लेकिन बहरहाल ये अगर कहीं ये सूरत हाल ना हो तो ऐसी हल्के फुल्का तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है कि ना कोई शोर मचाने की नौबत पेश आए। असल में देखिए मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन इससे हम आखरत को बचा रहे हैं। जब इंसान अमल करना शुरू करता है ना हमारा, तो असल में वो भी बहुत इतना कम हो गया है मेयार, कि ज़रा सा कोई इंसान दीन पे कुछ अमल करने लगता है तो लोग फौरन उसे एक्सट्रीमिस्ट कहने लगते हैं। इसमें कौन सा एक्सट्रीमिज्म है? एक्सट्रीम पे तो हम जा रहे हैं गुनाहों के अंदर, नेकियों की तरफ। कौन सी नेकी ऐसी कर रहे हैं कि एक आध कोई नेकी कर ली तो एकदम से एक्सट्रीमिस्ट शुमार होने लगे? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हमें अपने आखरत को बचाना है। शैतान हमें धकेले चला जा रहा है गुनाहों में। कोई गुनाह हमें जब इंशाल्लाह ये गुफ्तगू ख़त्म होगी शायद अगली कुछ क्लासेस के बाद, फहरिस्त गुनाह ने कबीरा पेश करूँगा। 100 गुनाहों की फहरिस्त वो आपके सामने आ जाए कि बड़े बड़े गुनाह कौन से। 100 गुनाहों की फहरिस्त होगी तो फिर आप देखेंगे कि अरे इसको तो हम बहुत ही मामूली गुनाह समझते तो ये भी गुनाह कबीरा निकला जिस पर अज़ाब जहन्नुम का वादा किया गया, तो उस वक्त एहसास होगा। तो बहरहाल मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगी, ये तो एक ऐसी चीज़ है किसी को पता भी नहीं चलेगा, और आप जो है लेकिन आपके नफ्स को तकलीफ होगी इससे, आपको एहसास होगा मैंने वाकई को गलती कर दी। अब हम सारे प्रिविलेजेस ले रहे होते हैं, बड़े बड़े गुनाह सारे कर रहे हैं, क्योंकि पैगंबर की उम्मत में होने की वजह से हम पर कोई अजाब नहीं आता। जैसे पिछले देखिए पिछले अंबिया जो थे उनकी जो उम्मतें थी, कोई शख्स अगर एक गुनाह कर लेता था उसकी पेशानी पर लिखा हुआ आ जाता था इसने ये गुनाह किया। हमारे पैगंबर की उम्मत में होने की वजह से ये हमें ये रुजिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता। घर के दरवाजे पर लिखा हुआ आ जाता था इसने ये गुनाह किया। कोई कपड़ा नजीस हो जाता था तो काटना पड़ता था, पाक नहीं हो सकता था। कोई शख्स अगर नमाज पढ़ना चाहता था तो एक मखसूस जगह थी कि वहीं आकर नमाज पढ़ो, किसी और जगह नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन पैगंबर की उम्मत में होने की वजह से पूरी जमीन को हमारे लिए मस्जिद बना दिया गया, कहीं पर भी चाहो तो नमाज पढ़ सकते हो। हाँ, गुना मिलेगा। और दूसरे कि आपको कफारे भी देना पड़ सकते हैं, तो आपको दिमाग में होगा कि अरे ये तो मुझे एक और गुना मेरे जिम्मे लाजिम आ रहा है और ये कफारा भी मुझके ऊपर आ जाएगा, तो खुद बखुद आप एक आध दफा ही ऐसा होगा फिर आप अपने आप को रोक लेंगे। या मसलन आप इस तरह से भी कर सकती हैं कि अगर मुझसे ये फुला गुना हो गया तो एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगा। अब पेट में जब कुलोल्ला पड़ी जा रही होगी, आप कहेंगे एक तो मैं तब पढ़ चुकी थी नमाज फजर के बाद, और एक अब पड़ी जा रही। तो बहरहाल उस वक्त आपको एहसास होगा करे मुझे काश मैं गुनाह ना करती। क्योंकि देखिए गुनाह करने के बाद इंसान तौबा तो कर लेता है, लेकिन उससे कहीं बेहतर और कहीं ज़्यादा आसान गुनाह ना करना इंतहाई आसान काम। अगर आप देखें वाकई जन्नत को, लोग कहते हैं कि जन्नत हासिल करना बहुत मुश्किल है, जन्नत हासिल करना इंतहाई आसान है, दोजख कमाना बहुत मुश्किल। बड़े देखिए जन्नत क्या है कि ये गुनाह ना करो ना करो ना करो ना करो ना करो, बस ये आपको करना है। और चंद एक चीज़ें हैं कि सिर्फ बस साल में पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा, मसलन हज वाजिब है, रमज़ान में फ़कत एक महीने के रोज़े रखना होते हैं, हुमस भी निकालना है तो फ़कत साल में एक दफ़ा मसलन निकालना होता है, नमाजें भी हैं तो 5 नमाजें जो हैं कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 10 मिनट उसके अंदर लगते हैं। उसके बाद जितनी और चीज़ें सारी ना करो ना करो ना करो, इसमें तो कुछ करने को कहा ही नहीं जा रहा। आप कितनी आसानी से जन्नत हासिल कर सकते हैं। हाँ, जहन्नुम कमाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ती, चोरी करना पड़ती है, जुबानों को हिलाना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, मारना पड़ता है दूसरों को, फिर खुद भी पिटना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, तो कितनी सारी उसमें मेहनत है। इसमें तो कुछ ना करने पर आपको जन्नत मिल रही जो कि बहुत आसान है। तो मसलन मैं एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी, आप वाकई देखेंगे कि दो एक दफ़ा ही ऐसा होगा और आप उस गुनाह से रुक जाएंगे। पैगंबर इस्लाम और आइमा अथार के अपने ज़मानों में भी बहुत सारे नौजवान इन चीज़ों पर अमल करते थे। लोगों ने आकर इत्तला दी थी पैगंबर को कि नौजवान ने ये अरब की तपती हुई रेत के ऊपर अपनी कमीज़ उतार के अपनी कमर को जला रहा है उस गर्म रेत से। तो पैगंबर गए थे और बहरहाल उससे पूरा एक वाक़ा है तफसीली, और पैगंबर ने उसको तारीफ़ी अल्फाज कहे थे कि इस तरह से अपने नबूचात को कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि उस आखरत और जहन्नुम की उस आग से बचने के लिए इसी दुनिया में अपने आप को मैं सज़ा दे लूँ कि मैं गुनाहों की तरफ ना जा सकूँ। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान को चाहिए, जैसे कि ईरान के सदर थे मोहम्मद अली रजाई, शहीद हो गए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने कसम खाई है कि अगर कभी भी मैंने, अगर किसी नमाज का वक्त आ चुका है और उस नमाज को पढ़े बगैर अगर मैंने खाना खा लिया तो मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगा। शहीद सदर मोहम्मद अली रजाई वो कहा करते थे कि मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगा। यानी कभी भी नमाज का वक्त आ चुका हो इंसान पहले खाना खा ले और नमाज को मौखर करे, इसका मतलब है खाना खाने की अहमियत उसकी निगाह में ज़्यादा थी और नमाज की अहमियत कम थी। तो जो ज़ाहिर कम अहमियत की चीज़ होती है इंसान उसको बाद में अंजाम देता प्रायोरिटी लिस्ट में, इसका मतलब है कि नमाज बहुत पीछे। तो उनका एक तरीक़ाकार था, इससे क्या हुआ उन्होंने बाकायदा नज़र कर रखी थी इस चीज़ कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अगले दिन रोज़ा रखूँगा। इस तरह से अपनी रूहानियत और इरफान को इंसान बुलंद करता जाए, ये एक तरीका था अपने नफ्स को कुछ सज़ाएं देने का। छोटी छोटी इस तरह की सज़ाएं, गैर इस्लामी सज़ाएं नहीं, सूफिया का तरीक़ा के प्रकार की बात नहीं कर रहे, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसपे खुद शरीयत इस्लाम ने भी कि अगर कोई शख्स मसलन नमाज इशा जो है वो उसकी कज़ा हो जाए ना पढ़े तो वो अगले दिन रोज़ा रखे। बहुत से कफ़ारों की बहसों के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद अगला एक तरीका है और वो है तवील सिजदा। ठीक है, वो शहीद मोताहरी भी कहा करते थे, हमारे साथ एक बड़ा मसला हो गया है, वो ये है कि हमारे पास अपनी ज़ात के लिए कोई भी वक्त नहीं है। हर वक्त हम मजमे में रहना पसंद करते हैं, हर वक्त जम में गफीर में रहना पसंद करते हैं, और अगर अकेले भी होते हैं तो टीवी खोलकर एक लिहाज से चैनलों पे चैनल बदलकर हर वक्त आवाज़ें शोर फासिक व फाजिर अफराद के चेहरों को देखना। और उस टीवी में कभी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि रूहानियत को कौन कौन सी चीज़ें कम करती हैं। रिवायात में मसलन कितनी चीज़ें आई कि कंजूस की शक्ल देखने से दिल सख्त हो जाता है, कंजूस बखील जो होता है, यानी आपका दिल, जब आपका दिल सख्त होगा तो आप गुनाह ज़्यादा करेंगे। इसी तरीके से जितने भी फासिक व फाजिर व बदकार अफराद, आपको खुद पता है उन लोगों के कैरेक्टर जो टीवी पर घंटों आते हैं, आप घंटों बैठ के उनके इंटरव्यू सुनती हैं, जितनी देर आप उनके चेहरे की तरफ देखती हैं उतनी मुसलसल आपकी रूहानियत में कमी वाक़ होती चली जाती है, मुसलसल रूहानियत कम हो रही होती है। अब आप रोज़ाना की देख लें और फिर पूरी ज़िंदगी देख लें तो रूहानियत कितने लोअर लेवल पर आ जाती है। आम तौर पर हम जो घर घर के अंदर आम बातचीत कर रहे होते हैं या दोस्तों और सहेलियों के साथ आम बातचीत, यानी अभी मैं गुनाह वाली बातचीत को नहीं कह रहा कि मसलन हम बैठ के गीबतें कर रहे हैं एक दूसरे की और झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो उसको तो सोचिए क्या होगा। सिर्फ मुबाह बातें, जब बाकायदा जो हमारे मुस्तहब कफ़ारों की एक फहरिस्त है उसमें मैं इंशाल्लाह कभी और आपको लिखवा दूंगा, वरना कुरान की एक आयत है कि जब भी इंसान किसी महफिल से उठकर उठने लगे, यानी महफिल बर्खास्त तो हम आप सहेलियों से मिल लेंगे, उठ के आप अपने घर जा रहे हैं, तो आम जो गुफ्तगु आप वहाँ पर करती हैं अपनी सहेलियों से, उससे जो रूहानियत में कमी वाक़ होती है, उस महफिल के अख्ताम पर एक कुरान की एक आयत पढ़ना मुस्तहब है दुआ के तौर पर, सुबहाना का रब्बिल इज्जत रब, सुबहाना का सुबहाना रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं लिखवा दूंगा इंशाल्लाह, इतनी सिर्फ बीच में बात आ रही है। तो जैसे ही आप इस आयत को पढ़ेंगी वो तमाम पिछली रूहानियत जो उस गुफ्तगू में कम हुई है उस रूहानियत का ये चीज़ जाकर कफ़ारा बन जाएगी और आपकी वो रूहानियत को वापस ले आएगी। तो सोचिए कि आम मुबाहत के बातों के अंदर ये कफ़ारा उसका है, तो हम जो गुनाह करते हैं उससे हमारी रूहानियत कहाँ चली जाती हो। तो जितनी देर आप इन फासिक व फाजिर व बदकार अफराद के चेहरे, चाहे वो बाहर कितने ही हसीन और खूबसूरत क्यों ना नज़र आ रहे हैं, लेकिन को देखने से मुसलसल रूहानियत कम होती, और रूहानियत जब कम होगी तो इसका मतलब यह है कि यानी मलाइका आसमानी जो हमारे नफ्स के अंदर निगहबान हैं हमारे नफ्स के, वो अपने मोर्चे छोड़ते चले जाते हैं, उन मोर्चों के ऊपर शयातीन आकर कब्जा करते चले जाते हैं, और शयातीन का कब्जा जितना ज़्यादा उन नफ्स इंसानी के मोर्चों पर होगा उतना ही आपको गुनाहों की तरफ ज़्यादा लेकर जाएंगे। तो इतनी ऐसी चीज़ें हैं ये, तो हमारे पास अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं। शहीद मुताहरी कहते थे हर शख्स को चाहिए कि रोज़ाना कम से कम उलामा के लिए ख़ास तौर पर एक घंटा, वरना एक आम शख्स जो है कम से कम आधा घंटा खिलवत में अपने परवरदिगार से राज़ो न्याज के लिए ज़रूर निकाले। इस अगर आपने अपने इसको कोई वक्त नहीं दिया और हर वक्त जम्मे गफीर में रहना पसंद किया तो आपकी मुसलसल रूहानियत कम होती जाएगी। अकेले कमरा हो, आप अपने परवरदिगार के साथ राज़ो न्याज करें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांगें, उससे बातें करें, आइम्मा की जो मुख्तलिफ दुआएं और मुनाजातें हैं वो उस अकेले कमरे में बैठकर पढ़ें उस खिलवत के उस, तो एक तवील सिजदा बाकायदा रिकमेंडेड है कि हर शख्स को चाहिए कि अपने घर में कुछ ऐसा एक नमाज की कोई ऐसी जगह मुकर्रर करे जहां एक बस हर वक्त ये ऐसा ना हो कि जानमाज फोल्ड होके कहीं अलमारी के ऊपर कहीं रखी हुई, आप पूरा नीचे उतारेंगे उसको, फिर उसे अनफोल्ड करेंगे और उसके बाद सीधा का निकालेंगे, उतना टाइम लगेगा जैसे हमारे यहाँ कुरान की हालत होती है, तो कुरान ऊपर दो छत्ती पे सीढ़ी लगा के उतारना पड़ता है नीचे, उसके बाद जुजदान के इतने सारे लपेटे होते हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो उसे वहीं रहने दो। ये हर वक्त हैंडी होना चाहिए, बल्कि तरबियत औलाद के जो तरीके हैं उसमें घर में जितने अफराद हैं, मसलन जितने अफराद हैं क्या उन सबके पास अलग अलग मोबाइल फ़ोन नहीं होते? हर शख्स का कुरान अलग होना चाहिए, हर शख्स की मफाती अलग होनी चाहिए, हर शख्स की तौजील मसाइल अलग होनी चाहिए। घर में अगर पांच अफराद रहते हैं तो पांच कुरान, पांच मफाती, पांच सहीफे कामला और पांच तौजील मसाइल और पांच इस तरह की सब चीज़ें होनी चाहिए। मसलन आप कहाँ एक दूसरे का टूथब्रश आप इस्तेमाल करती हैं, कहाँ एक दूसरे का तौलिया आप इस्तेमाल करती हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि आप अपने मुताबिक उन पेजेस को मोड़ें, कौन सी दुआएं आप पढ़ने की आदि हैं उसको निशान लगाएं, अपने फुट नोट्स उसके ऊपर कोई चीज़ लिखना चाहें अपने मामूलात ज़िंदगी के अंदर, तो ये सब चीज़ें। तो अपने घर में एक ऐसी जगह भी ज़रूर बनाइए जहाँ आप बस इधर खुदा की कोई नेमत याद आए और उधर एक सजदा बेख्तियार। एक आप मसलन आइम्मा की अपनी सीरत में मिलता है, लोग हैरान होते थे कि इमाम सवारी के ऊपर जा रहे हैं अपने ऊँट पर या अपने घोड़े पर बैठकर और बाजार में पहुंचे और एकदम से घोड़े को अपने रोका, अपनी सवारी को रोका, नीचे उतरे, किनारे पर गए और वहां जाके एक सिजदा किया। लोग हैरान रखे कि मौला सिजदा के नहीं, मुझे एक नेमत परवरदिगार याद आ गई थी। तो जब भी नेमत परवरदिगार याद आए, जब भी हमारे यहाँ ये है कि या तो इस तरह से सिजदा करो या इस तरह से सिजदा का अगर मौका ना मिले तो अपने हाथ के ऊपर अपने गाल को रख दो जिस तरह से इंसान सिजदा करता, अपने गाल को अपने हाथ के ऊपर हथेली के ऊपर रख के और जिक्र सजदा पढ़ लो, तो वो तुम्हारा एक सजदा जो तुम्हें परवरदिगार की कोई भी नेमत याद आई। तो हर वक्त सजदा करना मुमकिन नहीं होता और ज़ाहिर है कि आजकल का जो माहौल और माशरा है उसमें ख़ासतौर पर ख़वातीन कहाँ ऐसा करेंगी, तो वो इस तरह से उस सजदे शुक्र को अंजाम दे सकती। तो घर में अगर कोई ऐसा एक तवील सजदा, देखिए बाकायदा इसकी दलील है कि इंसान परवरदिगार से करीब का, कुरान की आयत है वस्जुद वक्तरिब, सिजदा करो और परवरदिगार के करीब हो जाओ। परवरदिगार के जितना आप करीब होंगे उतने शयातीन से दूर होंगे, जितना इंसान खुदा के नज़दीक आएगा उतना शैतान दूर होता चला जाएगा, उतने ही गुनाहों से दूरी बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अगर आप वो जिक्र यूनुसिया सजदे के अंदर पढ़ेंगे तो खुद बहुत तवील सजदा भी उसके अंदर आ गया, लेकिन अगर जिक्र यूनुसिया नहीं भी पढ़ रही हैं कभी भी कोई नेमत आए आते जाते उठते बैठते इधर से उधर जाते हुए और सजदा करते हुए चले गए।